ओम शांति। परम श्रद्धे परमादरणीय संतोष दीदी जी का हम बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। वरदानी बोल आपके, मानो ज्ञान रतन बरसाते हैं। आओ मिलकर हम सब स्वागत में जोरदार ताली बजाते हैं। रूहानियत के दर्शन होते हैं आपसे, ज्ञान की निर्मल धारा बहती आपकी वाणी से। संतुष्टता की खान है दीदी आप, संतुष्ट मणि बनाती हैं और जीवन मुक्त बंधन मुक्त के पुरुषार्थ को स्वयं करती और औरों को कराती है। इस विषय पर दीदी जी हम सबको बहुत सुंदर क्लास कराएंगे। आप महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना की जोनल इंचार्ज संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। मम्मा बाबा की पालना में पली आदरणीय ब्रजिंद्रा दादी जी के सानिध्य में रहकर आपने दिव्य संस्कारों को जीवन में धारण कर हजारों आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बना दिया है। पीस ऑफ माइंड के ज्ञानोदय एपिसोड में भी आप हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करती हैं, आदरणीय संतोष देवी जी।
ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाबा आकर के हम बच्चों को बंधन मुक्त और जीवन मुक्त बनाता। बाबा का बनने के पहले हरेक कोई अपने को देखे कि हम कितने बंधनों में बांधे हुए थे। पिंजरे के अंदर पिंजरा, पिंजरे के अंदर पिंजरा। ये जो उड़ता पंछी है ये पिंजरे के अंदर बंद हो गया था। देह का पिंजरा, देह के संबंधों का पिंजरा, रीत रसम का पिंजरा, संस्कारों का पिंजरा, भाव स्वभाव का पिंजरा, परिस्थितियों के पिंजरे और दूसरों के संस्कारों के पिंजरे। अनेक पिंजरे के अंदर आत्मा रूपी पंछी बंद होने के कारण फड़फड़ करता था, उड़ने की कोशिश करता था पर उड़ नहीं सकता था। तो प्यारे बाबा ने आकर के हम बच्चों को ज्ञान और योग के दो पंख दिए। माया रावण ने हमारे पंख काट दिए थे जिसके कारण हम उड़ नहीं सकते थे। वैसे तो हम लोग देखते हैं पंछियों को दो पंख होते हैं, परंतु बाबा ने अपने पंछियों को सिर्फ दो नहीं पर चार पंख दिए। ज्ञान और योग के भी पंख दिए, उमंग और उत्साह के भी पंख दिए, जिन पंखों के द्वारा हम तीनों लोगों का, तीनों कालों का चक्कर लगाते। ये हम ब्राह्मणों का परम सौभाग्य है जो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पुरानी दुनिया में से चुन चुन करके अपना बनाए। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदैव ये नशा रखो कि हमको भगवान ने पसंद किया है और हम उसके बन गए हैं और उसके कार्य में लग गए। कभी इतने जो बंधन थे हमें जात पात का बंधन, धर्म का बंधन, कितने बंधन। हमारा पहले एक प्रदर्शनी में चित्र होता था, एक गृहस्थी है, उसको चारों तरफ से रस्सियों से बांधा हुआ है, कहां से बच्चे खींच रहे, कहां से बीवी खींच रही किस रस्सी को, कहां से समाज खींच रहा है, कहां से गवर्नमेंट खींच रही है। बेचारा इतना बेहाल है, वो बात मत पूछ। बाबा ने इन सब बंधनों से आकर के हमें मुक्त कर दिया, सब बंधनों से छुड़ा दिया, इसीलिए तो उसको लिबरेटर कहते हैं, छुड़ाने वाला और वापस घर ले जाने वाला गाइड बन करके हम बच्चों के अंदर वो शक्ति भरी। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा ने हमारे को इन बंधनों से छुड़ा करके जीवन मुक्त का जो अनुभव कराया, क्योंकि एक ही परमात्मा है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। कोई भी धर्म स्थापक, महान आत्माएं, देवात्माएं, कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकती है सिवाय एक परमात्मा। बाबा हम बच्चों को आकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों भी देता और उसकी अनुभूति हमें यहां ही वो कराता है, क्योंकि बाबा के द्वारा हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सतयुग और त्रेता की अगर आप जन्म गिनती करेंगे तो सतयुग के 8 और त्रेता के 12 मिलके 20 जन्म होते हैं, और एक ये जो संगम युग का ब्राह्मण जन्म है, जो जन्म हीरे जैसा जन्म है, इसमें बाबा हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कराता है, बंधन मुक्त की अनुभूति कराता है। सतयुग में तो कोई बंधन होते ही नहीं है, वहां पर तो आत्मा है ही जीवन मुक्त, परंतु यहां बंधनों में रहते हुए भी हमें बंधन मुक्त क्या कहा, किसे कहा जाता है, इसका अनुभव होता है। जीवन में रहते हुए, जीवन को चलाते हुए, कमल पुष्प के समान जीवन बनाना यहां पर बाबा हमें सिखाता है। तो ये जो प्राप्ति है हमें संगम युग की, ये सबसे श्रेष्ठ और ऊंची प्राप्ति। तो अभी हम देखते हैं बाबा सबसे पहले हमें इस देह से मुक्त कराते, पहले जो हम सब अपने को देह समझ बैठे थे, आप अपना ईश्वरीय जीवन का पहला दिन अगर याद करेंगे, जब आप आश्रम में आए ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए, उस समय का आपका जीवन, आपका दृष्टिकोण, आपकी अवस्था, और जब ये आपको पहला लेसन मिला आत्मा का, स्व की पहचान मिली, उसके बाद के जीवन में कितना महान अंतर। पहले हम सब नेत्रहीन थे, परंतु बाबा ने आकर के हम बच्चों को तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया, जिस ज्ञान के नेत्र के द्वारा हमने खुद को और खुदा को पहचान। तो जब ये हमें खुद की पहचान मिल गई कि मैं ये देह नहीं, परंतु देह को चलाने वाली मैं चेतन सत्ता देही हूं, इसकी पहचान मिलते ही हम जैसे कि हमारे देह भान के बंधन जो है वो टूटने लगे। बाबा ने हमें आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई। आप अगर साकार बाबा की जीवन कहानी पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपको मालूम है ब्रह्मा बाबा ने इसके ऊपर कितनी मेहनत किया। बाबा बैठ के सारी कापियां की कापियां लिखता था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा, जितने घर के मेंबर है एक एक के ऊपर कापियां लिख दिया बाबा, क्योंकि आधा कल्प से हमें देह के अभिमान, देह के भान में रहने की आदत। वो बंधन इतना पक्का था, उस बंधन को तोड़ने के लिए मेहनत करना, ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि तुम देह नहीं परंतु देही हो, तुम इस देह के मालिक हो, ये देह तुम्हारी कर्म इंद्रियां हैं, तुम इनको चलाने वाली। तो जब बाबा ने हमें ये समझ दिया, उस समझ के आधार पर हम आत्म अभिमानी बन गए, देह से डिटैच हो गए। जब देह से डिटैच हुए तो देहधारियों से हमारा बुद्धि का योग टूटना चालू हो गया, क्योंकि देह के संबंध, जैसी देह अपनी तरफ खींचती है, बंधन में रखती है, वैसा ही देहधारियों ने हमें जकड़ा हुआ था। परंतु बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिस कराई, शुरू शुरू में यज्ञ में, इस देह भान को भूलने के लिए। एक है देह अभिमान और एक है देह भान। देह अभिमान तो पोस्ट पोजीशन का होता है, परंतु देह भान, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये जो भान है, ये भान ही अभिमान को लाता है। तो बाबा ने इस भान को भुलाने के लिए जो भी भट्टी में 350 भाई बहन थे उनको प्रैक्टिस कराई, मैं शिव शक्ति हूं। चाहे भाई थे चाहे बहने थी, ये प्रैक्टिस करो, मैं शिव शक्ति हूं। आत्मा ये शिव शक्ति है, इसमें मेल और फीमेल की बात नहीं। मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, इसमें मेल फीमेल दोनों भी आ गए, क्योंकि अगर अपने को फीमेल समझा तो भय पैदा होता है। अगर अपने को फीमेल समझा, फीमेल के भान में आए तो मोह पैदा होता है, और अगर अपने को हो पुरुष समझा तो जोश आता है, क्रोध आता है। इनसे मुक्त करने के लिए बाबा ने हमें ये पाठ पक्का कराया कि तुम पुरुष या स्त्री नहीं है, परंतु तुम शिव शक्ति चतुर्भुज। तो जब ये पाठ पक्का हो गया तो हमारी दृष्टि और वृत्ति जो है वो बदली हो गई। आज भी हम बाबा की मुरली सुन रहे थे कि जो दुनिया वाले इम्पॉसिबल समझते हैं कि रूई और अग्नि कभी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, परंतु बाबा ने अपने बच्चों के द्वारा ये प्रैक्टिकल में करके बताया कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए, साथ में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र और योगी बना करके बताया। एक दो बच्चे नहीं परंतु लाखों बच्चे। तो ये कमाल बाबा की है, और आप सभी को भी शाबाश है जो प्रवृत्ति में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र और योगी बना करके चल रहे। बहुत बड़ी कसौटी है, इस कसौटी से पास कराना एक ही परमात्मा का काम, दूसरे किसी की ताकत नहीं है। पवित्र बनो, योगी बनो, ये तो बाबा ने कह दिया। वैसा आप देखेंगे तो मनुष्य जो है, अगर कोई भी कार्य करने के लिए कहता है तो आपको ऑर्डर कर देगा, ये फलाना काम करना। परंतु भगवान परमात्मा की ये विशेषता है, वो हमें जो करने के लिए कहता है उसके लिए शक्ति भी देता है, उसके लिए युक्ति भी बताता है। पवित्र बनो ये तो कहा, पर कैसे पवित्र बनना ये भी सिखाया, और वो पवित्र होकर रहने के लिए हमें शक्ति भी दिया, देह से न्यारा भी बनाया। तो सबसे बड़ा पिंजरा तो हमारा वो टूट गया, वो बंधन हमारा टूट गया जो हम अपने को देह समझ के चलते, देहधारियों से बंधन जो सब हमारे ऊपर स्टैंप लगा के चलते थे, ये मेरी बहन है, मासी है, चाची है, फलाना है, चाचा है, ये सब स्टैंप उसने कैंसिल करा दिए। मेरे तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ, परमात्मा ये सर्व संबंधों की सैक्रीन, उसके अंदर सर्व संबंधों का मिठास है, उसने हरेक संबंध की मिठास हमको दिया, जिस मिठास को प्राप्त करने के बाद नष्ट मोह बनने की हमारे में ताकत आ गई। कहा जाता है आप मरे मर गई दुनिया, जब खुद ही मर गए तो उसके लिए तो सारी दुनिया ही मर गई। हमारे जो संबंध है देह के, जो बंधन बन के बैठे हुए थे, संबंध दुख नहीं देते हैं, बंधन दुख देते, तो वो बंधन जो हमें दुख दे रहे थे, उस लौकिक बंधनों को उसने अलौकिक बना दिया, बंधनों से हमारे को मुक्त कर दिया, सर्व संबंध अपने साथ जोड़ लिए और सर्व संबंधों की रचना हमको दे दी। उसके बाद हम देखते, बाबा ने देखो कैसा स्टेप बाय स्टेप हमारे बंधन काटे। उसके बाद है पुराने संस्कार, पुराने संस्कार, पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुराना भाव, पुराना स्वभाव, कितने बंधन, कितने कड़े बंधन। बाबा ने आकर के हम बच्चों को बताया, बच्चे संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होना है, तुम बच्चों को सारे संसार का परिवर्तन करना है, इसीलिए तुम्हें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा, और संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अपने विचारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। हम जो अपने को एक छोटे से संबंध में, छोटे से कुटुंब के भांति समझते थे, उसके बदले बाबा ने हमें बेहद में खड़ा कर दिया, ये सारा विश्व ही मेरा घर है, ये सारे विश्व की जो भी आत्मा है ये मेरा परिवार, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, इसकी स्मृति दिला करके विश्व कल्याण के लिए हम बच्चों को खड़ा किया। हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन करने के लिए, उस बंधनों को तोड़ने के लिए बाबा ने हमारे को आदि और अनादि संस्कारों की स्मृति दिलाई। सतयुग की आदि में तुम्हारे क्या संस्कार थे, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। बाबा ने उस आदि संस्कारों की स्मृति दिलाई, अनादि संस्कारों की स्मृति दिलाई। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, इन अनादि संस्कारों की स्मृति दिला करके, उन गुणों की स्मृति दिला करके, जो सृष्टि के मध्य वाले हमारे संस्कार थे, विकारी संस्कार, उन विकारी संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को रास्ता बताया कि तुम्हारे संस्कार ऐसे नहीं थे, तुम्हारे तो बहुत श्रेष्ठ संस्कार थे, ऊंचे संस्कार थे, तुम संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं थी। जब बाबा ने ये स्मृति दिलाई तो स्मृति के द्वारा हमें समृद्धि आ गई, हमारे अंदर वो शक्ति आ गई, स्मृति आते ही कि सचमुच हम ही निर्विकारी थे। तो एक बारी बाबा ने हमें देखो ड्रामा का ऐसा ज्ञान दिया, बच्चे ये ड्रामा हू बहु रिपीट होता है, तुमने एक बारी नहीं परंतु हर कल्प में इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किया है, जो काम घड़ी घड़ी किया जाता है उसमें मेहनत नहीं लगती, वो नेचुरल हो जाता है। तो जब ही हमें ये स्मृति आ गई कि हमने एक बार नहीं परंतु अनेक बार इन विषय विकारों को जीता है, तो उस स्मृति के द्वारा हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ गई जो विकारी संस्कारों को परिवर्तन करके निर्विकारी संस्कार हम अपने में धारण करना चालू कर। अपने विचारों को बदली कर दिया। बाबा ने निगेटिव विचार छोड़ने के लिए कहा, विकल्प छोड़ने के लिए कहा, फालतू संकल्प छोड़ने के लिए कहा, जिससे कुछ फायदा नहीं। आज भी बाबा ने देखो कैसी क्या दी, तुम्हें देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसा नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा परंतु उसको नहीं देखा जा सका। जैसा हम रास्ते में चलते हैं हजारों लोग दिखाई पड़ते, फिर एक एक को बैठ के देखते हैं क्या? कोई अचानक पूछता है, मैं रास्ते में जा रहा था, आपने मेरे को देखा? हम कहते भाई हमारा तो ध्यान ही नहीं था, हम अपनी मस्ती में चल रहे। तो उसी प्रकार ये जो पुरानी दुनिया है ये हमारे रहने के लायक नहीं, इसको हमें देखते हुए भी नहीं देखना। यहाँ की पुरानी बातें हमको सुनना ही नहीं। देखो बाबा ने हम बच्चों को अंतर्मुखी बनाया, बंधन मुक्त बनाने के लिए, जीवन मुक्त बनाने के लिए। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। पहले हम बाहर मुखी थे, बाहर देखते थे, अंदर देखने की हमारे पास फुर्सत नहीं थी। हर एक के घर में दो चीजें होती हैं, एक होता है आईना और दूसरी होती है विंडो। आईना होता है खुद का मुखड़ा देखने के लिए, विंडो होती है बाहर देखने। तो हम बाबा का बनने के पहले बाहर ही ज्यादा देखते थे, विंडो से ही ज्यादा देखते थे, आईने में नहीं देखते थे मुखड़े कि मेरे मुखड़े पर कौन सा दाग। तो बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन करो, स्व का स्मरण करो, स्व को परिवर्तन करो, ये सिखा दी, जिसके आधार पर हमने खुद को देखना चालू कर दिया, खुद को परिवर्तन करना चालू कर। तो अंतर्मुखी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मुख है, इस मुख के अंदर जो ऑर्गन्स है, इनके ऊपर अगर हमारी विजय हो जाती है तो हम स्वराज अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को सिर्फ भविष्य में राजा नहीं बनाता हूं, मैं यहां ही तुम्हें राज देता हूं। यहां तुम स्वराज अधिकारी बनते हो, भविष्य में विश्व राज अधिकारी बनते हो। मैं तुम्हारे को तीन तख्त देता हूं, जो स्वराज अधिकारी है वो बाप के दिल तक तनशीन, वही विश्व के ऊपर राज करने वाले। तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं हमारी, मुख्य कर्म इंद्रियां, आप देखो मुख्य कर्म इंद्रियां इस मुख के अंदर है। देखना, देखने के लिए आंखें हैं, बोलने के लिए मुख है, सुनने के लिए कान, आत्मा इधर रहती है। इसके ऊपर विजय चाहिए, अपनी सीट के ऊपर सेट हो जाओ, सीट छोड़ के नहीं भागो। आज जो भी है, जिसका जो भी पोस्ट पोजीशन है, अगर वो सीट पर है तो उसका मान है, सीट से उतर जाता है तो कौन पूछता है। तो उसी प्रकार अगर हम स्वराज अधिकारी है, अपनी सीट के ऊपर सदैव सेट होकर के पीछे इन कर्म इंद्रियों को चलाते हैं तो हम स्व के ऊपर हमारा राज हो जाता है। हमेशा आप देखो बाबा रोज हमें स्लोगन देता है। क्या स्लोगन देता है? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। सबसे पहले कौन सा स्लोगन दिया? बुरा मत सुनो। जिस प्रकार अन्न का असर मन के ऊपर होता है, उसी प्रकार सुनना ये जो है, ये भी कानों का भोजन। हम जैसा सुनते हैं वैसा हमारा चिंतन चलता है। बाबा क्यों बोलता है बुरा मत सुनो? बुरा सुनेंगे तो बुरा चिंतन चलेगा, चिंतन चलेगा बुरा तो कभी मुख से बुरा शब्द भी निकलेगा। अगर सुनेंगे ही नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनो, तो हमारे को सुनते हुए भी नहीं सुनना है। हमारा जिन बातों से कनेक्शन नहीं है, आत्म उन्नति नहीं है जिसमें, हम वो क्यों सुने? और वैसे भी आप देखो ये कान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्कूल में बच्चे जब गलती करते हैं तो टीचर क्या पकड़ता है उनको? कान पकड़ता है, नाक पकड़ता है, कान पकड़ता है ना। उसके बाद जब खुद गलती करते माफी मांगते तो क्या करते? कान पकड़ते दोनों। कितने इंपॉर्टेंट से देखो कान। तो इसको कहा जाता है दुकान। जैसे शहर में कोई रेट्स होता है, गमसान होता है, तो सबसे पहले क्या बंद करते हैं? मार्केट में दुकानें बंद हो जाती। अगर दुकानें खुली रखेंगे तो बहुत लूटपाट होगी, बहुत नुकसान होगा। तो उसी प्रकार बाबा कहता है ये दुकान जो है, ये दो कान दुकान, इनको बंद कर। बुरा सुनना बंद करो, क्योंकि इनको दरवाजा नहीं है। मुख को दरवाजा है, अगर मेरे को नहीं बोलना होगा तो मैं दरवाजा बंद कर देगी, ठीक है। आंखों को दरवाजा है, मेरे को नहीं देखना होगा तो मैं बंद कर देगी। कानों को कहां दरवाजा? दोनों दरवाजे खुले हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि ये दुकान अंदर से तुमको बंद करने पड़ेंगे, तभी क्या होगा? तुम बुरा सोचना, बुरा सुनना बंद करेंगे, वाहियात सुनना बंद करेंगे, फालतू सुनना बंद करेंगे, तो तुम्हारी फालतू सोच बंद हो जाएगी, तुम्हारी जीत हो जाएगी, तुम्हारी शक्ति जमा होती जाएगी। बुरा मत देखो। बुरा देखना माना क्या देखना? किसी के अवगुण देखना। भक्ति मार्ग में हम भगवान को कहते थे, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। अभी भगवान हमको कहता है, मैं तो किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता हूं, पर तुम किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरना, किसी के अवगुण नहीं देखना। अगर तुम किसी के अवगुण अपने चित्त पर धरेगे, तुम्हारा चित्त मैला हो जाएगा। मैला चित्त बाबा से नहीं लगे, मैला मन बाबा से नहीं लगे। इसीलिए हमें क्या करना है? हरेक का गुण देखना है, गुणग्राही बनना है। और आप देखो जब भी किसी का भी गुण वर्णन किया जाता है खुशी होती है, गुण देखते खुशी होती है, अवगुण देखते नफरत आती है। अवगुण उसमें और नफरत मेरे को आ रही है, नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ ना, हम क्यों देखें अवगुण? हम सभी का लक्ष्य ब्राह्मणों का क्या है? ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, ना कि सर्व अवगुण संपन्न बनना। दत्तात्रेय का मिसाल देते हैं ना, उसने 10 गुरु किए। कुत्ते को भी गुरु किया, तो पेड़ को भी गुरु किया, पत्थर को भी गुरु किया, माना उससे गुण सीखे। तो हमें अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाना है, अपनी दृष्टि को सिविल बनाना है, अपनी दृष्टि को दया की दृष्टि बनाना है, अपनी दृष्टि को रहम की दृष्टि बनाना है। इसीलिए दृष्टि परिवर्तन की बहुत आवश्यक। और ये जो मुख है, ये मुख दो काम करता है, खाने का भी काम करता है, बोलने का भी काम करता है। इसीलिए बाबा ने हमको पहले पहले क्या कहा? शुद्ध आहार। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं शुद्ध आहारी, उसके ऊपर हम सभी का बरोबर अटेंशन। उसी प्रकार बाबा ने दूसरी बात हमें क्या बताई? कैसा बोलो? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो। तुम योगी आत्माएं हैं, इस मुख के बंधन में नहीं आना है तुमको, इसको अपने कंट्रोल में लाना है। बंधन माना क्या हो गया? वो जैसा नचाएगा वैसा नाचेंगे, कहेंगे मेरे को बोलना नहीं था पर मेरे मुंह से निकल गया। अरे मुंह मेरा उसमें से निकला कैसा? मैं न चाहते हुए कैसा निकल गया? मतलब मेरा कंट्रोल नहीं है ना मुंह के ऊपर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सदैव याद रखो कि हमारे को कम बोलना है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमेशा कहा जाता है एक चुप सौ सुख, कम से कम बोलो, क्योंकि बोलने में शक्ति जाती है। डबल शक्ति जाती है, शरीर की भी शक्ति जाती है, आत्मा की भी ताकत जाती है, फालतू बोलेंगे ना। इसीलिए कम से कम बोलो, परंतु कैसा बोलो, मीठा बोलो। ऐसा नहीं कम बोलो और ऐसा बोलो सामने वाला रोता रहे सारा जन्म, ऐसा नहीं करना। मीठा बोलो, मीठे बोल सभी के साथ बोलो, जैसा कोयल बोलती है ना मीठा, सबको प्रिय लगता। तो बाबा ने हम बच्चों को मीठा बोलना सिखाया, कम बोलना सिखाया, सत्य बोलना सिखाया। और सत्य हमको कभी भी बोलना नहीं है, क्योंकि हम सच्चे पातशाह के बच्चे। बाबा को सत्यता अच्छी लगती है। सबसे बड़ा गुण परमात्मा का सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। तो वो सत्य है तो उसको सत्य अच्छा लगता है। सच्चे दिल पर साहब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल। तो इसीलिए हमारे को हमेशा कैसा बोलना है, सत्य बोलना है, मीठा बोलना है, कम बोलना है, और जो बोलना है वो सोच के बोलना, बोलने के बाद नहीं सोचना है। ज्ञानी अज्ञानी में ये बहुत बड़ा अंतर है। वो कर्म करने के बाद सोचता है, पछताता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया। और ज्ञानी जो है वो करने के पहले सोचता है। तो बाबा ने हमारे को अंतर्मुखी बनाया, माना इन कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना सिखाया। अभी हरेक को ये चेक करना है अपने को कि मेरा इन कर्म इंद्रियों के ऊपर कितना कंट्रोल, कितना संयम है मेरा इसके ऊपर, क्योंकि मैं राजा हूं, ये मेरे कर्मचारी है, मेरे कर्मचारी मेरे कंट्रोल में रहते हैं। तो देखो बाबा ने हमारे अंदर कैसा परिवर्तन लाया, हमारे बंधनों को कैसा कटा। हम इनके बंधनों में थे पहले, आत्मा को बांध के रखा हुआ था इसने, बाबा ने आके इससे हमको छुड़ा दिया। जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त होकर के चलो। जीवन तो है परंतु मुक्त वाला जीवन, मुक्त माना कोई बंधन नहीं, बंधन मुक्त, निर्बंधन स्थिति। बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, पशु पंछियों को, जानवर को, किसी को बंधन नहीं अच्छा लगता है, सबको स्वतंत्रता अच्छी लगती। तो अपने से पूछने की आवश्यकता है कि मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, नहीं तो हम खुद को छुड़ाने के लिए क्या कहते हैं, क्या करे मेरे ना संस्कार ऐसे है, क्या करे मेरा स्वभाव ऐसा है। पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार, बाबा कहता है जब तुम्हारा जन्म बदली हो गया, जन्म बदली होने के बाद सब कुछ बदली हो जाता है। जिनको ईश्वरीय जीवन का नशा है, जिनको ब्राह्मणपन का नशा है, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको कोई बांध नहीं सकता है। वो सदैव अपने को इन बातों से न्यारे रखते हैं और प्रभु का प्यारे रहते हैं। परंतु अगर ईश्वरीय जीवन का नशा नहीं है, याद ही नहीं है ईश्वरीय जीवन क्या है, तो उसको बिताएंगे कैसे। बंधन में बनते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। बंधन दुख देता है, संबंध सुख देता है, स्वतंत्रता सुख देती। तो बाबा ने आके हमें स्वतंत्र बनाया है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम स्वतंत्र हो। देह का बंधन नहीं, देहधारियों का बंधन नहीं, पुराने संस्कारों का बंधन नहीं, पुरानी आदतों का बंधन नहीं। कभी कभी दूसरे के संस्कारों का भी बंधन होता है, दूसरों के संस्कार देख के हम दुखी होते रहते हैं, अरे इसने ऐसा क्यों किया, अरे इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों चलता है, अरे वो क्या करता है, तेरा क्या जाता है। क्योंकि बाबा ने हमें इसके लिए ड्रामा का ज्ञान दिया। ये ड्रामा वैरायटी ड्रामा है, एक के संस्कार न मिले दूसरे से, एक की आदतें न मिले दूसरे से। हर एक अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजाता है। भक्ति मार्ग में पहले गाते थे हम लोग, तेरा भाणा मीठा लागे। हम समझते थे ईश्वर की भावी है, पर अभी बाबा ने बताया मेरी भावी नहीं है, ड्रामा की भावी होती है। ड्रामा की भावी है, सारी सृष्टि तेरे सूतर में बांधी हुई है। वो कहते ड्रामा के बंधन में बांधी है, मैं भी बांधा हुआ हूं। तो हरेक आत्मा ड्रामा के बंधन में बंधी है, हरेक एक्टर अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजाती है, दूसरों को देख के हमारे को डिस्टर्ब होना माना उनके बंधन में आ जाना, हमको उसमें नहीं आना, उससे सुख नहीं मिलता है। समझो अगर कहेंगे भाई सत्य बोलो, हम हमेशा ही सत्य बोलते हैं, हमको सत्य बोलना अच्छा लगता है, पर अगर कोई असत्य बोलता है तो हमारे को गुस्सा आता है, समझा? कहीं हम वैसा गुस्सा नहीं करते, हम सत्य बोलने वाले, सत्य वचनी है, सत्य मार्ग पर चलने वाले, पर दूसरा कोई असत्य बोलेगा ना तो हमको गुस्सा आता है। अच्छा उसने असत्य बोला, ये पाप है या पुण्य है? पाप है ना ही, उसने पाप किया और तुमने सामने से गुस्सा किया तो तुमने पुण्य किया या पाप किया? तुमने भी तो पाप ही किया, फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। उसने असत्य बोला और तुमने इतना गुस्सा किया जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर चढ़ गया, तो नुकसान किसका हुआ, तुम्हारा हुआ या उसका हुआ? ये तो बेसमझाई है ना, गलती उसकी और सजा मेरे को मिल रही है। तो इसीलिए दूसरों के संस्कारों के बंधन में भी हमको नहीं आना, हरेक कोई अपना अपना पार्ट बजा रहा है, एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है, इसमें हमको जाने की कोई जरूरत नहीं। वो डायरेक्टर बैठा है, आप ही देखेगा क्या करने का, वो जवाबदारी डायरेक्टर की आपकी और हमारी जवाबदारी नहीं है। हाँ अगर हम ठीक कर सकते हैं तो जरूर, बाबा कहता है एक दो के सहयोगी बनो, एक दो को मदद करो परिवर्तन करने में, परंतु नहीं कर सकते तो शांति से बैठो, बाकी खुद को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा ने देखो बच्चों को कितना बंधन मुक्त बनाया, पुरानी चाल चलन सबसे बंधन मुक्त कर डाला। माताओं बहनों में कितना होता है, ये भी तो बंधन होता है ना, कपड़े का शौक, ये क्या है, बंधन नहीं है? गहनों का शौक, बाबा बड़ा उस्ताद है, उसने देखा इनका, इनको विश्व का कल्याण करना है माताओं कन्याओं को, और इनकी बुद्धि कपड़ों में और गहनों में लगी हुई है, इसीलिए उसने आकर के युक्ति ऐसी किया, कफन पहना दिया सफेद, मरने के बाद क्या पहनते, कोई मरता है तो उसके ऊपर कौन से कलर का कपड़ा डालते हैं? सफेद कपड़ा डालते हैं, तो कफन पहना दिया, इसमें कौन सी डिजाइन है बताऊं मेरे को, कौन सा कलर है? कुछ भी नहीं। ब्रिजेंद्र दादी सुनाती थी, बाबा ने कैसा छोड़ा है, कहा एक बारी क्या हुआ, एक बड़ा ऑफिसर आया था कराची में, बाबा से बात कर रहा था, वो पूछ रहा था दादा ये सब छोड़ छाड़ के आते, भाग भाग के आते, आप इनको क्या देते हैं, ये सब माताएं बहनें भाई ये सब छोड़ के आ रहे, उस समय तो भट्टी बननी थी ना, सब छोड़ के आ रहे। बाबा ने कहा देखो ये जो भी आते हैं यहाँ, मैं ना इनको गहना देता हूं, ना मैं इनको कपड़े देता हूं ऐसे फैशनेबल ये वो, फिर क्यों आते हैं, इनको यहां पर क्या मिलता है? क्योंकि माताओं बहनों का तो गहनों में तो बहुत बुद्धि होती है, तो ये सब क्यों आते हैं यहां, यहां तो उनको ये कुछ भी नहीं मिलता है, यहां तो एकदम सिंपल रहना है। तभी तक तो गहने पहनते थे सभी, ये जब बाबा ने बात किया तो तभी तक तो गहने पहनते थे। उस समय पर जब ये बाबा ऑफिसर से बात कर रहा था तो ब्रिजेंद्रा दादी और मम्मा बाहर बगीचे में चक्कर लगा रही, तो इन्होंने सुना कि बाबा क्या बोल रहा है, तो आपस में बात किया, बोला देखो बाबा जो बोलता है हम तो एकदम विसंगत चलते, उलट चल रहे हैं, क्योंकि इनको तो गहने पड़े हुए हैं, मम्मा तो कुमारी थी, उसको थोड़े बहुत पड़े थे। ब्रिजेंद्र दादी को तो बाबा ने जवाहरी था तो बहुत गहने पहनाए, तो घर में भी बोला बहुत हीरों के गहने पहने हुए थे। तो बोला देखो बाबा बोलता है मैं इनसे त्याग कराता हूँ, हमने त्याग तो किया ही नहीं, बाबा एक बोलता है हम दूसरा काम करते। तो इन्होंने दोनों ने आपस में बात किया, मम्मा ने और ब्रिजेंद्र दादी ने, और उसी समय इन्होंने गहने उतार दिए। बोला आज से हम गहने नहीं पहनेंगे, तो गहने उतार दिए। बाबा ने कुछ नहीं बोला, बाबा के सामने गए, बाबा ने कुछ नहीं बोला। अभी क्या हो गया, इन्होंने गहने उतार दिए, ब्रिजेंद्र दादी ने उतारे, तो जसोदा थी उनकी सास, उसने देखा बोला तुमने गहने क्यों उतारे। तो बोला बाबा ऐसा समझाता है हम ऐसा कैसा पहनेंगे, हम तो नहीं पहनने वाले। फिर उसको ऐसा लगा कि इसने गहने बहू ने उतार दिए तो मैं क्यों पहनूं, उसने भी उतार दिए। फिर दूसरी माताओं बहनों ने देखा कि ये गहने नहीं पहनते, उन्होंने भी उतार दिए। तो तभी से लेकर के बाबा ने सबको प्लेन कर दिया। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे को अविनाशी गहने पहनाता हूँ ज्ञान के। तो इस समय तुम अविनाशी ज्ञान के गहने पहनते हो, फिर नई दुनिया में जाकर के तुम्हारे को वहां पर तुम कितने सजे सजाए रहते हो, देवी देवताएं देखो कितने सजे सजाए। तो यहाँ पर बाबा ज्ञान गहनों से, ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करता है, ये स्थूल श्रृंगार नहीं करता। तो बाबा ने ये भी बंधन तोड़वा दिया, ये भी बड़ा बंधन है ना मन का, बुद्धि उसमें जावे कितना बड़ा बंधन। तो ये बंधन भी तोड़वा दिया, इससे भी कैंसिल करा दिया, तो हमारा जीवन कितना बंधन मुक्त बन गया। देखो बंधन मुक्त जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त जीवन है, परंतु किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय बाबा ने बताया तुमको सब में समान रहना, क्योंकि ये ड्रामा की नूंद अनुसार सब कुछ चलता है, इसमें तुमको अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करना है। कैसा रहना है ये बाबा ने खुद करके बताया। वंडर तो ये है ना, हम सभी के आगे एग्जाम्पल कौन है, हमारा बाबा हम सभी के आगे एग्जाम्पल। तो बाबा ने खुद किया और बाबा को देख करके हम बच्चों ने किया, इसीलिए हमको सदैव ध्यान में रखना है कि हम अपने जीवन को किसी बंधन में बांध के तो नहीं चल रहे हैं। अगर थोड़ी भी दुख की फीलिंग आती है तो समझो हमारे अंदर कोई ना कोई बंधन है, कोई ना कोई बात है, किसी बात ने हमको बांध दिया है, इसीलिए हमको दुख की फीलिंग आ रही, जबकि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं और हम ब्राह्मण हैं। तो हमें ब्रह्मा बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है, क्योंकि जब तक ब्रह्मा बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो फरिश्ता नहीं बनेंगे, फरिश्ता नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सके। क्योंकि हम सभी का लक्ष्य यही है कि हमें फरिश्ता बनकर के देवता बनना है। सीधा कोई ही देवता नहीं बन सकता है, पहले फरिश्ता बनना है। फरिश्ते का मतलब जिसका किसी से रिश्ता नहीं, फरिश्ता उसको कहा जाता है, डबल लाइट, किसी से रिश्ता नहीं, आया अकेला जाना अकेला, सबके साथ होते हुए भी अकेला एकांत। तो जिस समय पर ये बुद्धि में रहता है कि हमें फरिश्ता बनना है, आप कोई शास्त्र ले लो, कोई किताबें ले लो, कहां भी ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि फरिश्ता आया और आकर के वो किसी के साथ उसका लगाव हो गया, वो यहीं बैठ गया, नहीं। हमेशा बताएंगे फरिश्ता आया, उसने ईश्वर का संदेश दिया और वो चला गया। तो हम सब ईश्वर का संदेश देने वाले संदेशवाहक हैं। उसने जो संदेश हमको दिया है, हमारा काम है सबको संदेश देना। हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। बाबा ने कहा ना तुम्हारा धंधा क्या है, तुम्हारे से पूछे ना तुम्हारा क्या धंधा है, उनको बोलो हमारा धंधा है नरक को स्वर्ग बनाने, हमारा धंधा है पतित को पावन बनाने, हमारा धंधा है मानुष को देवता बनाने, कितना बड़ा धंधा है। और सब धंधों में है नुकसान सिवाय इस धंधे के, इसमें फायदा ही फायदा है। ये आपका धंधा कभी भी माठा नहीं पड़ने वाला, आपको इससे कभी भी नुकसान नहीं होने वाला, सदैव फायदा होगा। आगे चल के देखना, धीरे धीरे सब धंधे बंद हो जाएंगे और ये धंधा जोर पकड़ता जाएगा। अनेक आत्माएं आकर के बाबा का बनेगी, समझा, आकर के बाबा से वर्षा लेगी। और हमें ये लक्ष्य रखना है कि ऐसी एक भी आत्मा वंचित नहीं रह जावे इस ज्ञान से, बाप से मिलने से। हमको सबको संदेश देना है। कोई कोई कहते हैं बहन जी क्या जरूरत है मत्थामारी करने की, देखो ना बाबा बोलते हैं ड्रामा में होगा तो आएंगे। अरे ड्रामा में होगा तो आएंगे, परंतु हमारा भाग्य कैसा बनेगा? आप कैसे आए? आपको भी तो किसी ने संदेश दिया होगा तभी आए। आज आप देखेंगे एक बोरी गेहूं की है, उसमें पत्थर कितने होते हैं? इतने पत्थर हो गए, ज्यादा कितने हो गए? एक पाव, थोड़े से पत्थर होते। पर हम लोग क्या करते हैं, एक बोरी गेहूं चुनते हैं, थोड़े पत्थर निकालने के लिए, एक मुट्ठी पत्थर निकालने के लिए सारी बोरी को साफ करते हैं हम। तो वैसे ही जो इतनी 500-600 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से बाबा के बच्चों को चुनने के लिए हमको सबको संदेश देना पड़ेगा ना। सबको संदेश देंगे तभी तो आएंगे वो लोग, नहीं तो कैसे आएंगे? हमको बाबा ने चुना है, हमारा काम है औरों को चुनना, औरों को संदेश देना। इसीलिए आपका काम है संदेश देना, आप संदेश देते रहो, समझा। बंधन मुक्त बनना है तो बाबा के संबंध में रहो, सर्व संबंध बाबा से जोड़ लो, बाबा के कार्य में बिजी हो जाओ। बाप और सेवा, इन दो बातों में अगर बिजी हो गए ना, तो कोई भी बंधन नहीं रहेगा, बंधन मुक्त हो जाएंगे और हमेशा उड़ते रहेंगे, ऊपर रहेंगे, नीचे आने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई बांध ही नहीं सकेगा आपको। सबसे बड़ा बंधन होता है मन का बंधन। बाबा ने मन के बंधन से छुड़ाने के लिए हमें क्या कर दिया, मन मना भव का महामंत्र दे दिए। पहले मन का कितना बंधन था, कितने फालतू संकल्प आते थे, मन कितना भटकता था, कितना दुखी होता था, धक्के खाता था। अभी तो ठिकाना मिल गया, ठिकाना मालूम नहीं था इसीलिए मन भटकता था। अभी उसको ठिकाना मिल गया, बाप का परिचय मिल गया, बाप मिल गया, मन मना भव हो गया, तो हम क्या हो गए, उस मन के बंधन से भी छूट गए। तो इसीलिए हमें सदैव बाबा की आज्ञाओं पर चलते, आगे बढ़ते, अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाते हुए, औरों को भी ये संदेश देते हुए, उनको भी बाबा का बना के चलना, ये हमारा फर्ज बनता है। अपने फर्ज को हमेशा याद करने की आवश्यकता है। जो सदैव अपने कार्य में बिजी रहते हैं, माया उनके नजदीक भी नहीं आती। बिजी होगा तो कौन आएगा बताओ? वैसा भी आप समझो, आपको कोई फोन करता है, परंतु आपका फोन अगर घड़ी घड़ी अंगेज आएगा तो आखिर क्या करता है वो, तंग आ जाए, अरे जाने छोड़ दो, ये कभी भी इसका बिजी होता है, कौन इससे बात करेगा। तो वैसा हम अगर बाबा के साथ बिजी हो गए, बाबा की सेवा में बिजी हो गए, तो माया तंग हो जाएगी ना, अरे इनके पीछे लग के कुछ पैदा, जाने दूसरा ग्राहक और ग्राहक को जाके ढूंढेगी, वो हमारे को छोड़ देगी फिर। इसीलिए माया के बंधनों से छूटने के लिए बाबा ने हमें सेवा का खिलौना दे दिया है कि सदैव अपने मन को और अपने तन को इस सेवा में लगा के रखो, तो तुम्हारे सब बंधन आपे कट जाएंगे। ओम शांति।